السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج ہم سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہم نے آیت نمبر 4 ہاف کی تھی اور ہاف رہتی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور ایا صرف کا تجھ سے نستعین، نون شروع میں آ گیا، تو میں نے جیسے آپ کو نعبدو کا بتایا تھا، اسی طرح نستعین میں بھی نون شروع میں جو ہم کا معنی دے رہا ہے، اور عین واو نون عون مدد کو کہتے ہیں، اعانت بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، کسی کی اعانت کرنا، مدد کرنا. جب سین اور تا شروع میں آ جائیں باب استفعال سے، اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باب استفعال میں طلب کا معنی آتا ہے، یعنی کوئی چیز مانگی جائے. تو نستعین جب آ گیا تو ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد چاہتے ہیں. اہدی، ہدایت دے، دکھا دے، نہ ہم کو الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذینہ ان لوگوں کا، الذینہ کنیکٹنگ ناؤن ہے، ان لوگوں کا، انعمتا، انعمتا انعام سے ہے، اصل میں تو نعمت سے ہے نا، نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہوتی ہے، انعام کیا. اور اینڈ میں تا زائد ہے، ایک یعنی ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جو اس کا حصہ نہیں تھی، اور تا کے اوپر زبر آ جائے ایسے اٹیچ ہو کے الگ سے، تو اس کا مطلب انعام کیا تو نے. ایسے ہی ہے جیسے آپ انگلش میں بولتے ہیں آئی این جی لگا دیں تو اس کا مطلب ہے، جیسے سنگنگ، سٹینڈنگ، سٹنگ، اس کا ایک معنی ہوگا. اور اگر آپ اس کو کسی اس میں ایس لگا دیں کسی لفظ کے آخر میں تو اس کا معنی کچھ ہوگا، یعنی پلورل بن جائے گا. تو یعنی اسی طرح عربی میں آخر میں اگر کوئی ضمیر آ جاتی ہے تو اس کا معنی اس کے مطابق ہوگا، جیسے یہاں پہ انعمتا ہے، این انعمتا کا تا کے اوپر زبر ہے، وہ تو نے کا معنی ہے، تم جس کو کہیں گے. تو انعام کیا تو نے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وجہ یہ آپ نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جمع کا بھی ایک چانس ہو سکتا ہے، تو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ اس کی توحید بیان کی جائے. اگر توحید نہیں بیان کی گئی اور باقی سب طرح سے بات کی جائے، اور توحید کے اندر کہیں ذرا بھی خلل آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی توحید کو بیان کریں. تو ہم کہتے ہیں انعام کیا تو نے، مطلب اللہ تعالیٰ نے. اعلیٰ اور ہم دو لفظ جڑ گئے تو علیہم بن گیا. اعلیٰ تو آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، عین لام یا، اپون اوپر، ہم ان کے، ہم بھی ایک ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو اعلیٰ کے ساتھ جڑ گئی. ہم الہ کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے، الیہم بھی بن جاتا ہے، فا کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے، فہم بھی بن جاتا ہے. تو اس طرح سے اوپر ہم ان کے، हम और हिम एक ही बात है। गैर ना, जैसे हम कहते हैं एक महरम है और एक गैर महरम है, ठीक है, तो गैर मतलब नहीं है जो महरम, तो इसी तरह गैरी ना उनके, यानी अल मगदूब, मगदूब जैसे मफ़ऊल जिसके ऊपर फेल किया जाए ना, तो गजब किया गया। अब दोबारा अलैहिम आ गया, आला ऊपर, हिम उनके, वा और ला, ला का माना सबको आता होगा, ना अदौलीन जो दौल की जमा दौलीन, दौलीन वो हैं जो गुमराह हुए। जलालत और गुमराही आप उर्दू में भी बोलते हैं कि गुमराही के लिए यही लफ्ज आता है, और यहाँ पे या नून एंड में लगी है, या नून ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में आप एंड में एस लगाते हैं तो वो जमा बन जाता है, तो बॉय का बॉयज बन गया। तो या नून या वाउ नून लग जाए तो प्लूरल बन जाएगा। तस्निया का हम फिर बाद में करेंगे, अभी आप बस ये बात समझ लें कि जो गुमराह है यानी रास्ता गुम कर गए। यहाँ तक हमारा आज का लेसन है। देखते हैं हमने जो पहले पढ़ा था, उम्मीद है कि आपने उसके ऊपर गौर व फिक्र किया होगा और एक एक आयत को आपने उसके ऊपर तदब्बुर किया होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्लास में, और कुछ पॉइंट्स आपने घर में एक एक आयत को पढ़ना है और उसके ऊपर गौर करना है और सोचना है उसके ऊपर, तो आपको ज़्यादा माने खुलेंगे और ज़्यादा जब आप गौर व फिक्र करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इंसान फिर खुद भी उसको समझ आने लगती। अब इसके अंदर एक ये भी बात है कि जब आप नमाज में भी पढ़ रहे हो तो तब भी इनको, अब आपने तर्जुमा समझ लिया और याद भी कर लिया होगा, तो इन अल्फाज को उनके तर्जुमे को जहन में रखते हुए आपने अदा करना। आप देखेंगे कुरान करीम जो है ये आपको बहुत कुछ देता है। आपको सबसे बड़ी बात ये कि आपको कुछ चीज़ों को देखने का जो जाविया है उसको बदल देता है। जैसे आज आप चीज़ों को देख रहे हैं ना, उस तरह से नहीं फिर आप देखते, समझ लें कि आप फिर कुरान की ऐनक से चीज़ों को देखने लगते हैं। जैसे आप बाहर निकलते हैं, सनग्लासेस लगाते हैं, वो डार्क होती हैं, आपको हर चीज़ डार्क नज़र आने लगती है ना। आप रेड लगा ग्लासेस रेड शीशों वाली लगा लेंगे, रेड नज़र आएगी, ब्लू लगा लेंगे, ब्लू नज़र आएगी। इसी तरह कुरान की ऐनक जो लगा लेता है उन ग्लासेस के साथ फिर हर चीज़ कुरान के मुताबिक नज़र आने लगती है। फिर जो आज आप देखते हैं, मसलन आज आप किसी को बहुत मालदार देखते हैं तो शायद आज आपके मुंह में पानी आता हो, लेकिन कल जब आप कुरान की ऐनक लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी आजमाइश है। आप आज किसी को देखते हैं तो सोचते हैं इसको इतना गम क्यों पहुंचा, ये देखो इतने उससे गुजारा, इसका क्या कसूर है। कल आप जब कुरान की ऐनक लगा लेंगे तो आपको फिर किसी और तरह उसको देखेंगे, फिर जब उसको देखेंगे तो सोचेंगे पता नहीं इसके कितने दर्जे बुलंद हो रहे हैं आखरत में, कितना कुछ इसको मिलने वाला है इसको पता ही नहीं अभी। तो कुरान की जब ग्लासेस लग जाती हैं ना तो सब कुछ फर्क नजर आने लगता है। फिर आप खूबसूरत मंजर देखेंगे तो आपको जन्नत याद आएगी, आग देखेंगे, कभी उंगली जल जाएगी तो जहन्नम याद आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अल्लाह ताला इस रास्ते पर हमेशा रखे। तो हमने पढ़ा था इय्याके नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, और उसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा और मैंने आपको इबादत की तारीफ भी बताई कि क्या है। इमाम इब्ने तैमिया ने इबादत की एक और बड़ी जामे तारीफ की है कि इबादत तो हर उस कौल और अमल का नाम है जो अल्लाह ताला को पसंद, यानी जो उसकी रज़ा के लिए किया जाए, जो उसको खुश करने के लिए किया जाए। ये नहीं कि हम खुद ही कोई अमल निकाल लें कि भाई इससे अल्लाह ताला खुश होता हो, हमें तो रोल मॉडल ऑलरेडी अल्लाह ताला ने दे दिए हैं कि इस ज़िंदगी से अल्लाह ताला खुश है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि इबादत का मतलब क्या होता है, कि गायतुल हुब, मोहब्बत की इंतहा, माअज़्ज़ुल, तवाज़ो के साथ, आजजी के साथ, जिल्लत के साथ। तो इज्जो इनकसारी भी हो, तजलील का इजहार भी हो, जैसे गुलाम अपने आका के सामने जिल्लत का इजहार करता है, और बेतहाशा मोहब्बत भी हो। अब उस लिहाज से देखा जाए तो क्या जिसको हम इबादत करते कहते हैं उसमें मोहब्बत होती है, कि या वो मारे बांधे की होती है, दिल की तंगी के साथ होती है, और उसके अंदर कोई जैसे किसी ने मजबूर करके खड़ा कर दिया, जबर के साथ खड़ा किया, इस तरह से करते हैं। अगर दिल की खुशी ही नहीं और इंतहाई मोहब्बत के जज्बात ही नहीं और दिल का बिछ जाना ही नहीं, तो फिर इबादत क्या हुई? जबकि अल्लाह ताला ने हमें इसी काम के लिए तो पैदा किया है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुद, फरमाया कि हमने किसी और चीज के लिए नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। और इंसान अगर दुनिया में आके यही काम ना करे, और इसी को नहीं आपने समझा कि ये काम कैसे करना था, और इबादत होती क्या है? बस जो वालदैन ने सिखा दिया, एक कारी साहब लगा दिए, उन्होंने आके बता दिया भाई इस तरह नमाज पढ़नी, इस तरह से कुरान पढ़ना, बस वो वहीं का सीखा हुआ। उसके बाद ना कोई पता है इबादत क्या है, ना कोई पता है कैसे करनी है। तो फिर क्या क्या हासिल किया? आपका तो मकसद ही दुनिया में आने का ये था, तो आप इबादत को ही ना समझे, होती क्या है? इसीलिए आप देखें पूरे कुरान का राज सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का राज इस एक आयत के अंदर है, इस एक आयत में, इया का नाबुदु और इया का नस्ताईन। तो वैसे हम जुबान से तो कह देते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाह, कि मेरी तमाम इबादात जिनका ताल्लुक जुबान से है ना, कौली इबादात, वो अल्लाह के लिए, वो सलावात और आज़ा की भी जितनी इबादात है वो अल्लाह के लिए, और वो तय्यिबात और माल की भी जितनी इबादात है वो अल्लाह ताला के लिए। लेकिन जब ये कह दिया उसके बाद ये पता ही नहीं है कि मैं जो जिन इबादात का नाम ले रही हूँ, ये मेरा दिल भी राजी है इन पे, मैं खुशी से करती हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है अल्लाह ताला से। तो यहाँ पे तो पूरी जिंदगी का आपने वादा कर लिया कि अल्लाह मैं तेरी सिर्फ इबादत करती हूँ, और सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और किसी की नहीं, ये आपने वादा कर लिया। और इस वादे के बाद अब आप खुद सोचें, जब आपने किसी को कह दिया कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं, अब इसके बाद यानी अगर कोई कहे मसलन मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका नौकर हूं और आप मेरे आका हैं, अब इसका मतलब क्या होगा? कि अब आका कुछ हुक्म देगा जो ये नौकर करेगा ना? अगर वो कोई हुक्म ही नहीं देता और इसने कहा है आप मेरे आका हैं, मैं आपका नौकर हूं, चलिए नौकर आपको समझ आती ना, इसलिए मैं ये कह रही हूं, अगर वो कोई हुक्म ही नहीं देता तो फिर वो रब कैसा हुआ वो, और ये गुलाम कैसा हुआ? क्योंकि गुलामी का मतलब तो ये है कि, या नौकर होने का मतलब तो ऑटोमेटिकली उसने ये कह दिया ना कि अब आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वो मान लूंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? ये इंतजार है कि अब आप कोई हुक्म देंगे कुछ करने का या किसी चीज से मना करेंगे तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं वैसे करने को तैयार हूं, क्योंकि तो आपने मान लिया है ना कि मैं गुलाम हूं, मैं बंदा हूं, तू मेरा रब है, तू मेरा मास्टर है। तो मालिक होने का मतलब यही है, रब होने का मतलब यही है कि वो सिर्फ नाम का नहीं हो, बल्कि अब वो कुछ वो कहेगा ना। और गुलाम होने का भी मतलब ये नहीं कि अब उसके बाद बस कह दिया तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब तो कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया। जब हमने ये वादा कर लिया ना, तो हमने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिर तैयार भी हैं आप अब्द बनने के लिए, या अभी भी दिल के अंदर ये है कि भाई हम तो किसी की गुलामी नहीं कर सकते, हम तो किसी का कहना नहीं मान सकते, हमें खुद ही पता है कि हमने क्या करना। तो जब आप नमाज में खड़े हुए हैं और आप ये कह रहे हैं, तो आप तो बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। इसीलिए तो इल्म लेना जरूरी है कि पता तो चले हम कह क्या रहे हैं। अब तैयार हो जाए फिर, जब आपने कह दिया हम तो, वरना तो ये झूठ है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है, उसकी गुलामी के लिए, उसका कहना सुनने और मानने के लिए, तो फिर तो आपने जो भी बोला उसके अंदर कोई रूह ही नहीं है, सिर्फ अल्फाज हैं जो रटे हुए हैं। तो हमने ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा हलफ उठा लिया। और आगे वा और इया का, सिर्फ तेरी, नस्ताइन, हम तुझसे, ते सिर्फ तेरे से हम मदद मांगते हैं। अब देखिए, इया का दो दफा आया, इसकी एक वजह है, ये भी हो सकता था इया का नाबुदु व नस्ताइन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन दो दफा आने का एक फायदा है इसके अंदर, अगर कहा जाता या का नाबुदु व नस्ताइन तो क्या फर्क था और अब क्या फर्क है? तो तब ये होता कि हम तेरी इबादत करते हैं और इबादत करने में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इबादत करने में हम तेरी मदद चाहते हैं। फिर सिर्फ इबादत में आप मदद चाहते थे, बाकी चीजों के अंदर नहीं, लेकिन ये ओपन है, हर चीज में ही अल्लाह हम तेरी मदद चाहते, पूरी जिंदगी के हर फैसले में, हर जगह पर, चाहे वो आखरत का हो, दुनिया का हो, हर मामले में हम तेरी मदद चाहते। तो इसके अंदर जब या का नस्ताइन कह दिया तो ओपन हो गया। दूसरे ये कि या का नस्ताइन में दो बातें आती, एक तेरे से हम मदद तलब करते हैं, नंबर टू तेरे सिवा किसी और से नहीं करते, यानी आपने सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करने का आपने इकरार किया और बाकियों को डिनाई किया है, बाकियों का आपने इनकार किया है कि किसी और से हम तलब नहीं करते। तो ये आपने वादा कर लिया अल्लाह ताला के साथ। और जब इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार कर लेता है, ये वादा कर लेता है मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, हदीसे कुदसी में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गिना और तवंगरी से और तवंगरी और मालदारी से भर दूंगा। नहीं, ये नहीं है कि उसके पास पैसे बहुत आ जाएंगे, मतलब है अल्लाह ताला उसको और तरह से भी मालदार कर सकता है। और आज फितनों के दौर में तो अल्लाह ताला की इबादत करना, इसका अजर इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फितनों के दौर में अल्लाह ताला की इबादत करता रहेगा उसको अल्लाह ताला इतना अजर देगा जैसे वो हिजरत करके मेरे पास आ गया। सोचें आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज जिंदा होते और आप हिजरत करके उनके पास पहुंच जाते, जो आपको हिजरत करने का सवाब मिलना था, वो सवाब फितनों के दौर में अल्लाह ताला की इबादत करने का है, क्योंकि इस वक्त में इबादत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इबादत सिर्फ रुकू सजदे करने का नाम नहीं, सिर्फ इबादत ये नहीं है कि आप नमाजें पढ़ लें और आपने रोजा रख लिया तो इबादत हो, बल्कि पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की बात को मानना अनकंडीशनली, ये जरूर नोट करें, गैर मशरूत तरीके तौर पर मुकम्मल सबमिशन, ये नहीं कि हाँ ऐसा होगा तो फिर ये होगा तो फिर ऐसे होगा तो फिर मैं करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी, और ये ना हुआ तो फिर नहीं मैं मान सकती, ऐसे नहीं, इताअत करनी है चाहे जो भी हो जाए, तब है वो इबादत पूरी तरह। आप जैसे गुलाम होता है, वो उसका कुछ भी अपना नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था ना, उसके तो अपनी प्रॉपर्टी भी अपनी नहीं होती, उसका पैसा अपना नहीं होता, उसके आराम अपना नहीं होता, उसकी छुट्टी अपनी नहीं होती, सो सारा कुछ ही उसके मालिक का होता है। इसके लिए तैयार हैं आप? सोचें कि हम क्या कहते हैं, कितना बड़ा वादा करते हैं, और दिन में कितनी दफा करते हैं, 25-30 दफा तो करते ही है ना, लेकिन हम सोच नहीं रहे होते। हमारे दिल उस तरह मोहब्बत से भरते क्यों नहीं है? हम कहीं यह करना आबू तो हमारा दिल मोहब्बत से भर जाए, क्योंकि इबादत है ही वो जो इंतहा दर्जे की मोहब्बत। ये भी नहीं कि इसमें थोड़ी सी मोहब्बत, हम चीजों से मोहब्बत करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत इससे भी कर ली, थोड़ी बहुत उससे भी कर ली, नहीं, इंतहा दर्जे की मोहब्बत कि उससे ऊपर किसी की मोहब्बत ना हो। समझ रहे हैं आप सूरह फातिहा को? मामूली बात नहीं है। और मदद भी हम सिर्फ तुझसे तलब करते हैं। अब एक है हमारी मदद तलब करना, मसलन मैं आपको कहूँ मुझे पानी ला दें, आप मेरा ये काम कर दीजिए, आज मुझे वहां पे ले जाएं, तो ये भी तो मदद मांगना है। वो मदद नहीं कही जा रही, मदद वो जो के जैसे कि गायबाना किसी को समझना के बगैर असबाब के कोई मदद कर सकता है, वरना वैसे तो इस दुनिया को चलाने के लिए हर एक को दूसरे की मदद की जरूरत है, वरना दुनिया के काम तो एक बंदा खुद थोड़ी सारे कर सकता है। अब आपने अपने घर के कामों के लिए कोई मददगार रखे होंगे, कहीं जॉब्स के ऊपर लोग मददगार हैं जो के काम करते हैं, किसी ने कोई हेल्पर रखा हुआ है दुकान पे, तो इस तरह से तो कोई मसला नहीं है। ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया था ना, मन अंसारी अल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में, तो पैगंबर ने भी मदद मांगी। तो बात ये नहीं है कि आपने मदद मांग ली किसी से तो वो शिर्क हो गया, ये इसको समझ लें। बात ये है कि अगर असबाब से हट के मदद मांगी है, एक है ना सबब, आप सबब देखते हैं, ये बंदा है आपने उसको कहा कोई मसला नहीं है, आप उससे मदद मांग सकते हैं, मगर जब आप याद रखें, ये भी बात याद रखें, जब मदद उससे भी मांगते हैं ना, आपने मुझे कहा कोई चीज पकड़ा दे, तो ये याद रखे वो बंदा भी मदद तभी कर सकता है जब अल्लाह का इज़न, वरना वो वहीं पे गिर सकता है, वो पैरालाइज हो सकता है, वो चीज तक ही नहीं पहुंच सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं, अब आप एक मदद मांग रहे हैं ना कि मुझे मतलब जो भी मेरी बीमारी है वो दूर हो, अब ये नहीं कि डॉक्टर ने मुझे शिफा देनी या ये दवा है जो मुझे शिफा दे रही है, उसमें भी जहन में कॉन्सेप्ट ये बिठाएं अल्लाह ने करना है, अल्लाह सुभाना ताला करेगा तो होगा, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। ये छोटी से छोटी चीज कि कोई पानी तक लेकर आएगा तो वो भी मेरे तक तब तक ही पहुंच सकता है जब तक कि अल्लाह ताला चाहता, जबकि अल्लाह का इज़्ज़त हो। तो जो भी जराए हैं, मीन्स हैं, जिनके जरिए मदद आती है, वो भी अल्लाह की तरफ से है। और बगैर जरिए के हम सोचे, ऐसा ना, अभी तो जरिया है ना, मतलब आपने कहा भी ये लेकर आए, उसके हाथ हैं, वो गया है, उसने बात सुनी है, गया है, लेकर आया। अच्छा, अगर आप ये कहें कि बगैर जरिए के ही कोई मदद आ जाए, मसलन है, कोई सबब नहीं है, लेकिन आपने यहां बैठ के कहा या गौसे आजम मदद, या अली मदद, आप क्या सबब है इसके अंदर, क्या जरिया है इसके अंदर, कोई भी नहीं। उन तक बात पहुंचने का जरिया आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वो हई और कयूम है, यहां पे भी बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, वहां पे भी सुन रहे हैं, मैं जहां पे उनको पुकारूंगी वो सुनेंगे भी और मेरी मदद करने पर कादिर भी हैं, ये सारा आपने मान लिया। ये है फिर जहां पे शेर कहा जाता है, और ये है वो जो कि इतनी खतरनाक बात है, क्योंकि जन्नत की चाबी तौहीद है, याद रखें जन्नत की चाबी तौहीद है। तौहीद वाला गुनाह गार भी होगा तो एक दिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन अगर शेर क्या इस तौहीद के अंदर मिलावट है तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, शिर्क को अल्लाह ताला ने माफ नहीं करना। और जिस गुनाह को चाहे माफ कर। जिस चीज में शुबा भी हो, शक भी हो शिर्क का, वो भी ना करे। देखिए, अगर आप किसी और को भी पुकारते हैं, किसी का नाम लेके भी, या फलां मदद या जो भी कहते हैं, तो उसका नुकसान एक सबसे पहले ये कि जिसको पुकारोगे वो आपकी पुकार सुन ही नहीं सकता। नंबर टू, वो आपके कोई काम नहीं आ सकता। नंबर थ्री, आखरत में ये शिर्क ले डूबेगा। अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया, अक्सर लोग ईमान नहीं रखते मगर शिर्क के साथ, यानी उन्होंने ईमान के साथ शिर्क को मिक्स किया होता है। ऐसे नहीं कि वो पूरे मुशरिक हैं, मगर उनके ईमान के अंदर मिलावट होती, शिर्क की आमेजिश होती। आप दूध के अंदर पूरी देग में पेशाब के दो कतरे डाल दें, पियेंगे उसको? शिर्क तो इतनी बड़ी नजासत है, वो सारी तौहीद को खराब कर देगी अगर शिर्क का जर्रा बराबर भी तौहीद के अंदर शामिल हो गया। तो जब आप कोई मीन्स, कोई जरिया इस्तेमाल करें, अब डॉक्टर का आपको पता है, डॉक्टर दवाई देगा या कोई सर्जरी करेगा या कोई कुछ करेगा, वो गैब से तो नहीं बैठ के आपकी मदद कर रहा। अगर आप ये सोचेंगे ये गैब से मेरी मदद कर देगा, इसके पास इतनी पावर्स हैं कि ये जो भी कर सकता है, तो ये है वो जो शिर्क तक पहुंचाता है। समझ आई? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं अच्छा फिर हम इससे मदद मांग ले, तो फिर क्या इससे भी ना मदद मांगे, उससे भी ना मांग। तो आपको समझना है कि कौन सी मदद आप मांग सकते हैं और कौन सी मदद आप नहीं मांग सकते। और अल्लाह ताला से हर किस्म की मदद मांगे। सहाबा का तो सुभान अल्लाह ये तरीका था, देखें नमक भी मांगना होता ना तो अल्लाह ताला से मांगते पहले, यानी आपने किससे कुछ चीज मांगनी, पहले अल्लाह ताला से मांग ले फिर उस बंदे से मांग ले। वो नाजायज नहीं है उस बंदे को कहना कि भाई आप, अब आप फोन यूज करते हैं, कुछ कुछ जरिया यूज किया ना आपने, लेकिन आप वैसे ही बैठे हुए सोचे मेरी आवाज फलां था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, खुदाई ताकतें हैं ना ये, तो कि ऐसी खुदाई ताकतें उसके पास है, यहाँ पे शिर्क आ जाता है। जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हदीसे कुदसी है, बड़ी प्यारी लंबी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उस शख्स के जिसको मैं खिलाऊं, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको खिलाऊं। तो देखिए ना, यानी खाना भी अल्लाह देता है, इन्हें हम कहें कि मेरी कंपनी है वो मुझे पे करती है तो हम खाते हैं, फलां है तो हम खाते हैं वरना तो हम खाए ही ना। अच्छा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये हज़रत अली हजवेरी को कहते हैं ये दाता हैं, ये यहाँ पे हैं तो फिर ये सारे शहर को यहाँ पे रिस्क मिल रहा है, और ये फलां हैं तो फिर समंदरों को इन्होंने रोका हुआ इसलिए तूफान नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम भूखे हो सब सिवाय जिसको मैं खिला दूं, तुम मुझसे मांगो ना, कहा गया मांगो। देखिए, हर एक जो दुनिया में है उससे आप दूसरी तरफ आप मांगे, तीसरी दफा मांगे ना, तो वो इरिटेट होने लगता है, तंग होने लगता है कि भाई क्या आपने हमारा ही देख लिया, घर आप हर वक्त मांगने आ जाते हैं और आप उनका फिर फोन उठाना ही बंद कर देते हैं कि इनका तो काम ही है मांगते रहना। ठीक है, आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन अल्लाह ताला वो हस्ती है जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। सुभान अल्लाह, यही फर्क है खालिक और मखलूक के अंदर। मखलूक तंग होती है, खालिक किससे खुश होता है जब आप मांगते। और सबसे पहले ही कुराने पाक में मांगना ही तो सिखाया गया है। इससे अपने आप को बेनियाज ना समझा करो, हमने क्या मांगना है, हमारे पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, सारा कुछ है हमारे पास। नहीं, ये एरोगेंस है, ये तकब्बुर है। अल्लाह ताला हम हर वक्त ही तेरे मोहताज हैं, कोई वक्त ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह ताला के मोहताज ना हो। बस सिर्फ ये कि आप रियलाइज नहीं शायद करते, एक सांस लेने में भी आप अल्लाह ताला के मोहताज हैं, उसका इज़न होता है तो वो सांस आती है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला बिन मांगे भी हमें बहुत कुछ अता किए हुए, काफरों को कितना कुछ अता किए हुए, सबको अता कर रहा है बिन मांगे, लेकिन उसको अच्छा लगता है जब आप मांगते हैं। तो फरमाया ए मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो, यानी नंगे बदन हो, तो मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। कभी आज तक आपने लिबास मांगा? नहीं मांगा, इसलिए कि पहले ही हमारे पास काफी है, हम तो खुद ही जाके ले आते हैं, हमें मांगने की क्या जरूरत। खाना तो हमारे पास पहले ही फ्रिज में, हमें मांगने की क्या जरूरत। पानी हमारे पास है, हमें मांगने की क्या जरूरत। नहीं, इस पे भी मांगे, ला हम तेरे मोहताज, तू हमें पहना, तू हमें खिला। तो लिबास पहनते बाद भी ये सोचे कि अल्लाह की देन है, ये मेरा थोड़ी है। हर चीज से उसको पहचाने। मैंने आपको कहा ना कि जब आप कुरान की ऐनक लगा लेंगे ना, हर चीज से अल्लाह तआला को पहचानेंगे, उसमें रब की मोहब्बत नजर आएगी आपको, उसकी बख्शिश नजर आएगी, उसकी देन नजर आएगी। फिर ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय जिसके जिसको मैं हिदायत दे दूं, तो मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ये भी कीमती नेमत है हिदायत, ये भी मांगो। ये ना कहो हमें सब पता है, हमें कौन बताएगा, लो अब हमें ये सिखाएंगे कुरान, हम इससे सीखेंगे, जैसे कि हमें नहीं पता कि कैसे जिंदगी गुजारनी। नहीं, हमें नहीं पता, आज ही अल्लाह ताला को पसंद है। तो फिर फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुनाहगार हो, कोई गुनाहों से पाक नहीं है। फरमाया, तुम सब गुनाहगार हो और सिर्फ मैं गुनाह बख्श सकता हूं, तो मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, के बख्शने वाला खुद फरमा रहा है, तुम मुझसे बख्शिश मांगोगे ना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो फिर देर किस बात की, फिर क्यों नहीं बख्शिश मांगते। तो दुनिया की चीज हो या आखरत की, हर चीज सिर्फ अल्लाह के हाथ में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, नमक तक, कि अगर सहाबा वो अल्लाह ताला से मांगते हैं तो सोचे, छोटी से छोटी चीज जिसको हम कुछ वो अहमियत नहीं देते, उससे लेके बड़ी से बड़ी चीज, हिदायत और जन्नत तक अल्लाह ताला से ही मांगनी। और जो चीजें हमें मिल रही होती ना, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि मसलन आपको अगर जैसे मेल है आपके, मेल आपको ईमेल में भी आपको खत आ सकता है, आपको टेक्स्ट में भी आ सकता है, आपको डाकिया भी लेके आ सकता है, डिफरेंट जराए हो सकते हैं ना, लेकिन सोर्स एक है ना पीछे, जहां से वो खत आया। इसी तरह आप इसको ऐसे समझिए कि रिस्क है, आपको रिस्क दुकान से भी मिल सकता है, जॉब से भी मिल सकता है, कोई और मजदूरी करके भी मिल सकता है, किसी तरह से भी मिल सकता है, लेकिन उसका सोर्स पीछे वो नौकरी नहीं है, वो दुकान नहीं है, वो अल्लाह ताला की जात है। जैसे मैंने आपको ये मेल का बताया, अब ये नहीं आप कहेंगे कि ये देखो व्हाट्सएप कितना अच्छा है कि ये मुझे खत इसने दिया, और डाकिया कितना अच्छा है, आपने मुझे ये खत दिया, वो उसने नहीं दिया, उसने सिर्फ पहुंचाया, वो सिर्फ हाथ थे पहुंचाने वाले, आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, मगर ये मत समझे कि ये उसी की देन है। ठीक है, ये छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस तरह से आप समझे। और वो क्यों ना देगा जिसके खजानों का हाल किया है, कि फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा अव्वल और आखिर, अगला पिछला, जिंदा मुर्दा, जिन इंसान, अब इसमें कोई रह गया? कोई भी नहीं रहा ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक, और जिन्नों में हर जिन जब से पैदा हुआ और जब तक कयामत तक, जितने जिन है, और बच्चा, बूढ़ा, जवान, मुसलमान, काफिर, जो मर चुके वो भी, जो जिंदा है वो भी, सारे जमा हो जाएं और मुझसे मांगने लग जाएं, और मैं सबकी दुआएं कबूल कर लूं, जितना जिसने कहा सब उनको अता कर दूं, अपनी मर्जी से मांग रहे हैं, जो चाहे मांग, मैं सब अता कर दूं, तो भी सबको देने के बाद भी मेरे खजानों में इतनी सी कमी भी नहीं वाकई होगी जितनी समंदर में सुई डबो के निकाली जाए। मुझे बताएं, सुई डबो के निकाल के देखें कभी समंदर में कोई कमी आई, कोई कमी आई? उसके खजाने इतने हैं, उससे सवाल नहीं हम करते, और अपने जैसे मोहताजों से सवाल करते, हर इंसान मोहताज है। मैं ना कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब मोहताज हो, सबको खाने की भी जरूरत है, लिबास की भी जरूरत है, हिदायत की भी जरूरत है, बख्शीश की भी जरूरत, सारे इंसान है ना। लेकिन हमें इंसानों के पास चले जाते और उनसे मांगने से नहीं शर्माते, और अल्लाह ताला से मांगने से शर्माते हैं क्या? या फिर ये समझते कि उसने देना नहीं, वो तो खुद फरमा रहा है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से जो चीज भी आपको मांगनी हो वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे। जिस रब ने इबलीस की भी दुआ को सुन लिया और उसको दे दिया जो उसने मांगा था, तो वो क्या कोई इंसान इबलीस से ज्यादा तो नहीं वर्स हो सकता? इसलिए ये सोचना फलां जगह जाएंगे तो औलाद मिलेगी, फलां जगह जाएंगे तो शिफा मिलेगी, फलां के दर पे जाएंगे तो हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, फलां ऐसा करेगा तो, नहीं, ये अकीदा ही नहीं रखना। तो ये फलां मुश्किल कुशा है या हाजत रवा है या दस्तगीरी करने वाला है या दाता है या गौसे आजम है, ये सब इय्याका नस्ताईन के अकीदे के खिलाफ है। कोई किसी ने कहा कवालियों में लोग सर तो बहुत धुनते हैं, कभी सोच भी लिया करें कि ये कहा क्या जा रहा है? ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? अब ये कितनी बड़ी शिर्क की बात है कि ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? कुफरिया कलमात यही तो हैं, और कुफर क्या होता है? इकबाल ने कहा था ना कि गैरों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिर ही क्या है? यही तो कुफर है। कुफर करते हैं और फिर या कनस्ताइन कहते, अभी कह रहे हैं अल्लाह मैं तेरा नौकर, मैं तेरा गुलाम, मैं सिर्फ तेरे ही दर से मांगता हूं, मेरा तो और कोई है नहीं। और फिर जाके नमाज खत्म की और चादरें चढ़ाने लग गए, क्योंकि यहाँ पे चादर चढ़ाएंगे तो ये खुश होंगे, यहाँ पे देख देंगे तो ऐसा होगा, वहां पे धागे बांधने लग गए। तो या का नस्ताइन को समझें। और अरबी में मदद के लिए और भी अल्फाज है, नसर भी है मदद, मगर यहाँ पे आउन से ये वो मदद होती है कि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले, उसके बाद जब उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली उसके बाद कहता है कि बस मेरी लिमिट हो गई, मैंने अपनी जितनी मेरे पास ताकत और हिम्मत थी मैंने लगा ली, अब आगे ए अल्लाह तू मदद फरमा। ये है आनत, ठीक है? तो ये जरूरी है कि इंसान खुद कोशिश करे फिर मदद के लिए पुकारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में लड़ने के लिए खड़े हो गए थे, सहाबा को लेकर पहुंच गए थे, उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। ये नहीं कि घर पे जाके बैठ गए हो और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगी हो, तो तब अल्लाह ताला ने फरिश्ते उतारे थे। तो अब हाथ पैर तोड़ के बैठ जाना और कहना बस अल्लाह ताला हमें यहीं पे खिला देगा और यहीं पे पिला देगा, सारा कुछ खुद ही हो जाएगा, क्योंकि बस तू गैब से करता रहे, हमने क्या करना है? बस जी अल्लाह ताला की होगा इज़्ज़त तो हो जाएगा, तो आप भी तो कुछ करें ना। तो इसलिए या का नस्ताइन का मतलब ये नहीं होता कि इंसान खुद कोशिश ना करे। दूसरी तरफ एक और मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि हम सिर्फ उस वक्त मांगते हैं, या कहें कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ आते हैं जब हमने कुछ मांगना होता है, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक। बाज लोगों का तो ऐसा है कि यानी एक विश लिस्ट होती है ना इंसान के पास, ये मुझे चाहिए, बस कब कुछ चाहिए होगा फिर अल्लाह ताला ये दे दे दे, बस उसके अलावा कोई अमल दखल नहीं अल्लाह ताला का हमारी जिंदगियों में, ना हमने कोई बात उसकी माननी है, ना हमने कोई, बस अपनी हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होनी चाहिए और उसमें देर भी नहीं लगनी चाहिए, जो ही हमने मांगा उस वक्त मिल भी जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो फिर हमें बड़ी मायूसी हो जाती है, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। चलो या हम भी वैसे ही नाराज हो जाते, छोड़ो नमाजों को, हमने पढ़ के क्या करनी जब हमारी दुआ ही नहीं कबूल हुई, हमने तो बड़ा मांगा था। यानी आपकी नमाजें भी इसलिए कि आपको आपकी विश लिस्ट पूरी हो जाए, आपका अल्लाह ताला की तरफ आना भी इसलिए सिर्फ कि हमारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, मेरी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। यानी इतना धौंस वाला रवैया रखते हैं। अब इसमें बताएं कहां से मोहब्बत है इंतहा की और कहां पे आजी है ऐसी बातें करना। ये अल्लाह ताला से ताल्लुक तुम्हारा सिर्फ चीजें लेने का है। हमें तो कोई ऐसा करे तो हम फौरन कहते हैं कितने मतलबी हैं। अल्लाह ताला ने आगे आप पढ़ेंगे कुरान करीम में बहुत जगह ये बयान फरमाया है कि ऐसे लोग हैं जब फिर उनको जब उनकी कश्तियां भंवर में फंस जाती हैं तो फिर अल्लाह अल्लाह ही करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं यही ताल्लुक तो नहीं है अल्लाह ताला के साथ। तो मांगे उससे मदद जरूर मांगे, मगर उसके साथ उससे पहले क्या है, इया करना आबुदू है, उसके बंदे बन के रहे। इया का नस्ताइन पहले नहीं आया, इया करना आबुदू पहले आया। हिकमत समझ रहे हैं, आप बंदे बन के रहें और उसके बाद कहें ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते। हमारा तो यानी जैसे ऐसे कोई इंसान कह नहीं रहा होता अल्लाह मेरा तो और कोई है ही नहीं, मैं किसके पास जाऊं, मैं कहाँ जाऊं अल्लाह, सिर्फ तू ही तो है जो मेरी मदद कर सकता है, तू ही तो है जो मेरे काम संवार सकता है, तू ही तो है जो मेरी दुआएं सुन सकता है, मेरे तो काम बन ही नहीं सकते अल्लाह सिर्फ तेरी। ये नहीं है कि नस्ताहीन हम मदद चाहते हैं बस, सिर्फ तुझसे। कितनी दफा इकरार करते हैं ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे कि हमें ये बातें समझ आ जाए और हम इनके मुताबिक वाकई अल्लाह ताला के बंदे बन के रहें, कि हमारा हर काम जो हुआ उसमें नजर अल्लाह ताला की तरफ, कि जिंदगी की इबादत जैसे मैंने अभी आपको बताया इमाम इब्ने तैमिया ने क्या फरमाया, हर कौल और अमल जिसे अल्लाह ताला को खुश करना हो। तो अब आप कहीं बैठे भी हैं, दोस्तों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो इनके साथ भी मेरा ताल्लुक अल्लाह की खातिर है। आप वालदेन के साथ भलाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला इससे खुश होगा। अब अपने बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं, मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी हैं, मैंने इनको निभाना है, मेरी पूछो नहीं है। मैं रिस्क हलाल कमाने के लिए निकल रही हूँ, तो ये भी रिस्क हलाल कमाना भी है इबादत है, और आपकी हर चीज इबादत बन जाएगी। कितना अल्लाह ताला का करम है, मगर उसमें सोच कहीं तो हो ना कि मैं क्यों कर रही हूं। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला फरमाता है, अब आप सोचें कि ये एक वाहिद सूरत है जिसमें हर आयत मुबारक के बाद अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसके बाद भी जवाब मिला हमें, और रहमान रहीम के बाद भी जवाब मिला। अब जब हमने ये आयत पढ़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, यानी बस अब मेरा और इसका मामला, अब ये जो मांगेगा इसको अता होगा। अच्छा, अब इंसान जो है ना इसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या मांगना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए आपकी एक विश, इस वक्त आप जो भी विश करें आप पूरी होगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, यहां पे बता दिया कि वो सबसे बड़ी जरूरत इंसान की वो उसको बता दी गई, सिखा दी गई। जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ना ये दुआ जो उन्होंने मांगी रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ये भी सिखाई थी कि ऐसे मुझसे तौबा करो, आदम को तो नहीं पता था, ऐसे मुझसे माफी मांगो। तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया आपके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप ये कहो इहदीना सिरातल मुस्तकीम, इहदीना हिदायत से, हिदायत के तीन माने हैं, रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। यानी एक होता है ना सिर्फ आप किससे रास्ता पूछते हैं वो कहता जाओ वो सीधे जाओगे, राइट मुड़ना लेफ्ट मुड़ना वहां पे वो आ जाएगा। दूसरा है कि रास्ते में थोड़ा सा आगे तक जाके आपको दिखा दिया, आपको चला दिया वहां पे, अब आप आगे तो आप खुद ही चले जाएंगे ना, यहाँ तक मैंने आपको पहुंचा दिया, वो देखे हम थोड़ा ही रह गया आगे चले। और तीसरा है वो आपका हाथ पकड़ के आपकी गाड़ी में बैठ जाए या आपकी गाड़ी में बैठ के आपको लेकर चले और वहां तक पहुंचा के आए। वो कहते ना, मैं दरवाजे तक पहुंचा दिए आपको, दरवाजे तक पहुंचा के आए। और किस चीज की हिदायत मांग रहे हैं, या कहां कौन से रास्ते की, जो रास्ता कहां तक लेकर जाता है, जिसकी मंजिल है मकसूद क्या है, जन्नत। जन्नत तक यानी पहुंचा देना, दिखा भी देना, चला भी देना, क्योंकि बाज दफा दिखता तो है, इंसान चलता नहीं है। आप देखे जो कुरान करीम का कोर्स मुकम्मल कर चुके, दिख तो गया रास्ता, लेकिन चलना उसके ऊपर ये एक अलग से काम है। हम ये नहीं कह सकते कि बस इल्म आ गया है तो बस हमें हिदायत मिल गई, सारी हमें हिदायत मिल गई। नहीं, हिदायत फर्क है, इल्म आना फर्क है। इल्म जरिया बनता है हिदायत पाने का, मगर ये नहीं कोई कह सकता मेरे पास इल्म है तो मेरे पास हिदायत भी है। ये इल्म तो इबलीस के पास भी बहुत था, हिदायत नहीं थी। यहूदियों के पास आगे हम देखेंगे, यहूदियों के पास इल्म बहुत है लेकिन हिदायत नहीं। तो हिदायत वो चीज है जो कि इंसान को इल्म के जरिए हासिल तो हो सकती है, मगर देखिए एक या रास्ता दिखाना वो है इल्म आपने ले लिया, आपको दिखने लगा, आपको क्लियर होने लगा। मैंने जैसे आपको बताया, आप जब कुरान की अनक लगा लेंगे तो आपको नजर आने लगेगा ये स्याह है, ये सफेद है, ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हराम है, ये हलाल है, सब नजर आने लगेगा। लेकिन उसके बाद अमल तो आपने ही करना है ना, तो रास्ते पे चला भी देना, फिर मंजिल तक पहुंचा भी देना। ये ना हो रास्ते में ही कहीं हम स्लिप हो जाए, अल्लाह ना करे, ये ना हो रास्ते में ही कोई ऐसा मसला आ जाए कि हम मंजिल तक ही ना पहुंच सके। अच्छा, फिर रास्ते ऐसा नहीं है कि आपने यानी बहुत बेस्ट हो के इस रास्ते के ऊपर ऐसे चलना है कि आपने जन्नत तक पहुंच के ही फिर खड़े होना है। जो इस रास्ते पे चल रहा है उसको मौत भी आ जाती है तो बस वो जन्नत में पहुंच गया। समझाई बात, कि इस रास्ते के ऊपर रहना जरूरी है मरते दम तक। जो इस रास्ते के ऊपर मरते दम तक रहेगा वो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। तो ये वो रास्ता है जो सिरात, सिरात पहले सिरात को समझ लेते हैं। सिरात वो रास्ता है कि जो खुला हो, कुशादा हो, लेवल्ड हो, क्लियर हो, यानी ऐसा रास्ता है बिल्कुल क्लैरिटी है उसके अंदर। ऐसे नहीं है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ ही नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा, वो ना हो। और कुशादा भी हो। एक होता तरीक, आपने जब कभी सऊदी अरब में जाए तो कहते हैं तरीक 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 तरीक, रास्ता दो रास्ता दो, आपने सुना होगा अरबों को। तरीक वो रास्ता होता है जो चल चल के बार बार चलने से ना वो रास्ता बन जाए, एक सबील भी रास्ता होता है। तो तरीक छोटा है, सबील उससे बड़ा, लेकिन सिरात बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना हाईवे, हाईवे समझ लें। हाईवे कितनी कुशादा होती है, इसमें कितनी सारी लेन्स होती हैं। और मजे की बात यह है कि तरीक का भी की भी जमा है तुरुक, सबील की भी जमा है सुबुल, लेकिन सिरात की कोई जमा नहीं है। इट मीन्स कि सिरात एक ही होगा। ये नहीं कि हर तरफ ही सिरात है, ये वाला ये भी ठीक है जी, वो भी ठीक है। वो आज के दौर के अंदर लोग ये कहने लग गए कि सारे ही रास्ते ठीक हैं, देखिए जी उन्होंने भी तो खुदा तक पहुंचना है। अब वो उसको भगवान कह देते, कोई बात नहीं। अब फलां हैं वो उसको पता नहीं क्या कह देते हैं, जो भी वो कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, है तो सब खुदा की तलाश में ही ना। ये गलत है। सिराते मुस्तकीम याद रखे एक ही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जितने लोग जितने कॉन्सेप्ट आज हर तरफ फैले हुए हैं, एक जंगल है फलसफों का और हर एक अपनी अपनी बोली यहाँ पे बोल रहा है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एवरीबडी इज राइट। याद रखें ये बात, ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए कह देते, नहीं नहीं ऐसे ना कहो कि आप गलत हैं, नहीं वो गलत हैं। ला इलाहा का मतलब क्या है फिर? पहले तो आप इनकार करो कि ये सब गलत हैं, नहीं है कोई इलाह, फिर आता है इल्लल्लाह। पहले आप ये कहो, आगे इसी में भी आ रहा है, ये सब कहो कि ये सब रास्ते गलत हैं, एक रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम है, वो एक ही है। किसी ने मिसाल देनी शुरू कर दी, देखें आप ये भी तो देखें ना, पहाड़ के ऊपर किसी ने पहुंचने, अब कोई इधर से पहुंच रहा है, कोई इधर से पहुंच रहा, पहुंच रहे तो सारे एक जगह ही है ना, नहीं, सिराते मुस्तकीम तो एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन खींची थी और फरमाया ये सिराते मुस्तकीम है, जमीन पे खींची और उसके साइडों पे लाइंस खींची, ये गुमराही के रास्ते हैं। जो इससे एग्जिट ले गया, चाहे वो थोड़ा सा ही लिया, डाइवर्ट हो गया, वो गुमराही के रास्ते पे चला गया। तो पहले कहा गया कि हमें गाइड कर दे अल्लाह, चला दे भी, गाइड कर दे भी, मंजिल तक भी पहुंचा दे ना, बस हम इसी के ऊपर रहें, हमारी मंजिल जन्नत है, जन्नत के रास्ते पे हमें चला देना। जब आपने ये कह दिया तो इसका एक मतलब ये नहीं है सिर्फ कि बस हम नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें तो जी हमें हिदायत मिल गई, और नहीं, आप हर मामले में असल में अल्लाह ताला से रहनुमाई मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं कि किसी मामले में कहीं ऐसा ना हो मेरी जन्नत मेरे हाथ से चली जाए। देखिए ना, अब कोई बंदा खड़ा होके शिर्क करना शुरू हो गया, किसी जगह पे जाके कोई ऐसी बात कहता है जो शिर्क वाली है, तो उसने अपना जन्नत का रास्ता खो दिया ना। कोई जाता है खड़ा होके झूठ बोल रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, हराम खा रहा है, तो इसने क्या किया, जन्नत का रास्ता खो दिया ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी काम से, किसी बात से, किसी चीज से मेरा जन्नत का रास्ता लॉस्ट ना हो जाए। और आप सोचिए कि जब इंसान को कोई चीज चाहिए होती है वो कैसे मांगता है? अच्छा, आपका बच्चा आपके पास अगर आगे कहे घर दे दें, गाड़ी दे दें, जॉब दे दें, आप कहेंगे ये तमीज है मांगने नहीं तुम्हें, ये तरीका है कहने का, हम अपने लिए भी नहीं ऐसे बर्दाश्त करते। और अल्लाह ताला के सामने इधन सरात मुस्तकिन सरात, हम उसको कोई सबक तो नहीं सुना रहे, हम कुछ मांग रहे हैं, मांगने का भी तो कोई तरीका होता है कि नहीं? और हम सुभान अल्लाह हर मामले में जिंदगी के अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांग रहे हैं, सिर्फ इबादत के मामले में नहीं, हर मामले में, अपने खानदान के मामलात में, अपने काम कारोबार के मामलात में, अपने रिश्ते नातों के मामलात में, अपने पहनने ओढ़ने के मामलात में, अपने शादी ब्याह के मामलात में, हर एक में, अपनी जॉब के मामलात में, अपनी पढ़ाई के मामलात में, अपने घर की जिंदगी के मामलात में, जिसमें भी अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा देना, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ ले जाता हूं, कि इनमें कहीं कोई ऐसी खराबी ना मैं कर छोड़ू कि मेरा जन्नत मेरी जन्नत मुझसे लॉस ना हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ने ये हमें सिखा दिया, और जिंदगी में ऐसे कई दफा होता है ना, आप सुबह ही करते हैं तो आपको ये चॉइस होती है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये काम करूं या ये काम ना करूं, मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। अब क्या है, जब आप ए दिन अस्सिरात मुस्तकीम कहते हैं ना, तो आप जहन में रखिए मेरे सारे ही कामों ने ठीक हो जाना है, मैंने अल्लाह ताला से रहनुमाई मांग ली है, अपने सारे कामों को जहन में रखें ना, उन सब में सीधा रास्ता चाहिए मुझे, किसी एक चीज में नहीं। मैं तो आजिज हूं क्योंकि मुझे तो अल्लाह तेरी मदद चाहिए, इबादत में भी तेरी मदद चाहिए और हर मामले में ही तेरी मदद चाहिए। भला इंसान खुद अपनी अकल से तो वो सारे सही फैसले नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है। अब आप जब ये मांग लेते हैं, अब मसलन फजर आपने पढ़ी तो अब आपने कहा इदिन सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे दिखा दे सीधा रास्ता, अब आप उसके बाद अपनी जॉब पे गए हैं या और अपनी कहीं और कारोबार पे गए, काम पे गए, उसके अंदर आप ये सोच लें कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा हुआ कि मुझे सीधा रास्ता दिखाए, तो अल्लाह ताला मुझे गाइड करेगा। मुझे गाइड करेगा, मुझे सीधा रखेगा, मुझे चलाएगा इस रास्ते पे, सही डायरेक्शन मुझे देगा। आप फिर उसके बाद जोहर का टाइम आ जाता है, जोहर में फिर आप मांगते हैं, फिर जोहर से असर तक आपके लिए गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई, अगर वाकई दिल से मांगा है तो। और सिरात तो ये हो गया, मुस्तकीम कौन सा रास्ता है, सीधा तो हम कहते हैं, मगर कामा से है ना, कामा किसको कहते हैं, खड़े होने को, कयाम इसी से है ना, हम नमाज में कयाम करते हैं। तो जब आपने कहा कामा तो इसका मतलब है सीधा खड़ा होना, तो जब आप सीधे खड़े हों तो अब आप खुद सोचें कि इस रास्ते का मतलब ये है कि ये सीधा खड़ा है। और जब कोई चीज ऐसे खड़ी हो तो इसका मतलब वो बुलंदी की तरफ जा रही है ना, जो जो इस रास्ते पे चलता जाएगा वो बुलंद होता जाएगा, और ऊपर को जाना आसान होता है कि मुश्किल, मुश्किल होता है ना, इंसान का सांस भी फूलता है, इंसान को थक भी जाता है ज्यादा, और एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है इस रास्ते पे चलने के लिए, ये चाहिए होगी। इसको ऐसे ही समझे जैसे आखिरत में भी तो एक पुल से रात है ना, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। तो ये सोच लें, आज जो सोचते हैं कि सिराते मुस्तकीम पे चलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो फिर हर चीज वो माननी पड़ेगी और ऐसे होगा तो क्या, कैसे हम याद रखें, जो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ा वो ही आखरत के पुल सिरात पे चल सकेगा। और सिराते मुस्तकीम में उलमा ने ये भी लिखा है, दो डॉट्स को मिलाने के लिए जो सबसे छोटी लाइन हो वो सिराते मुस्तकीम है। जिंदगी कितनी मुख्तसर है ना, कितनी देर के लिए चलना पड़ेगा, सबसे छोटी लाइन को कहा, सबसे छोटी लाइन जो दो डॉट्स के दरमियान है, वो बहुत ज्यादा टाइम है कि आपको हजारों लाखों साल आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना है और फिर अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस रास्ते पे चल, बहुत छोटी जिंदगी, इतना सा रास्ता है, यही बस तय करना है, जभी तो अल्लाह ताला जन्नत वालों से कहेगा तुम कितने अच्छे रह गए ना, इतनी से मुख्तसर जिंदगी के अंदर तुमने मुझे राजी करके जन्नत पा ली, और जहन्नुम वालों से फरमाएगा तुम कि तुम्हारी बदबख्ती कैसी है कि तुमने इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर इतना नाराज कर लिया कि जहन्नुम में एंड अप हुए। तो एक हमें क्या पता चला कि मुस्तकीम सिर्फ सीधा नहीं है माना, वरना तो सिरात में भी स्ट्रेट का माना आता है और खुले का माना आता है, और यानी कुशादगी का माना आता है, खुला कुशादा वास्ट जिसको कहते हैं। इससे पता चला कि देखें उस रास्ते के ऊपर बहुत सारे लोग चल सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही चलूं, और भी लोग होंगे जो चलेंगे, और आगे हमें पता चलेगा कि कितने लोग चल चुके। और दूसरी बात ये, यानी तो कोई तंगी नहीं होगी बहुत सारे लोग भी चले, दूसरी बात ये कि जब कुशादा रास्ता है, क्लियर रास्ता है, तो इससे क्या पता चला कि इसका मतलब अल्लाह ताला इसको वेग नहीं रखा कि कोई कंफ्यूजन हो किसी को, बिल्कुल क्लियर है वो, कोई ये नहीं कह सकता हमें तो समझ ही नहीं आती सिराते मुस्तकीम क्या है, अल्लाह को राजी कैसे करना है, हमें तो समझ ही नहीं आती, नहीं ये खुला रास्ता है और ये सीधा रास्ता है और ये क्लियर रास्ता है। ठीक, अब कोई भटकना चाहे तो वो खुद ही उसकी अपनी मर्जी है, वरना ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बताया नहीं, समझाया नहीं, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई पजल नहीं है, या छुपा के नहीं कहीं अल्लाह ताला ने रखा हुआ कि मुझे तलाश करना मुश्किल हो जाए, जैसे खजानों को तलाश करने के लिए लोग जाते हैं, ये क्लियर है बिल्कुल। तो जो चाहेगा सिंसेरिटी के साथ वो सिरात को आसानी से पा लेगा। मुझे अब देखें सवाल ये पैदा होता है कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा तो हमारे पास तो पहले ही हिदायत है, हम इस्लाम ले आए, हम मुसलमान हैं, अब तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, तो फिर अब हमें किस बात की हिदायत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही सूरत पढ़ा करते थे, तो वो तो उनका तो नाम ही हादी है, हिदायत देने वाले, तो फिर वो क्यों मांग रहे हैं हिदायत? तो बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, एक नंबर वन, हिदायत पे चलने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी उसे उतर ही नहीं सकता पटरी से, हमेशा उसको जरूरत है हिदायत मांगते रहने की, क्योंकि कोई पता नहीं कल को क्या हो, उसका दिल पलट जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे ना, या मुकल्लिबल कुलूब थब्बित कल्बी अला दीने का, ए दिलों को उलट फेर करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे कायम रखना, साबित रखना। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में ये दुआ भी सिखा दी, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद। तो इसका मतलब है कि हिदायत देने मिलने के बाद भी दिल टेढ़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वंस आपको जी हिदायत मिल गई अब तो सत्य ही खैरा है, अब तो बस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो हमेशा याद रखें, हिदायत अगर आज आपके पास है भी, कल को उसका कोई पता नहीं। जैसे एक वाक्य आता है अब्दा बिन अब्द रहीम रहीमहुल्ला, इन्होंने ये बयान किया वाक्या कि एक दफा हम एक जिहादी लश्कर में सरजमीने रोम की तरफ निकले, तो कहते हैं हमारे साथ एक नौजवान भी था जो हम सब में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा दीन को समझने वाला, सबसे ज्यादा फराइज का इल्म रखने वाला, और दिन को रोजा रखता था, रात को इबादत किया करता था, ऐसा वो था। इतना मतलब आप ऐसे बंदे को देखें तो आप भी रश करेंगे। कहते रास्ते में चलते चलते हम एक किले के करीब पहुंचे, तो लश्कर तो आगे बढ़ गया मगर वो नौजवान किले के करीब उतर गया। हमने सोचा शायद वो कजाए हाजत के लिए गया है, लेकिन दर हकीकत उसने किले के अंदर एक नसरानी औरत को देखा जो झरोके से झांक रही थी। वो इस पे फरेफ्ता हो गया, आशिक हो गया। उसने रोमी जमान में उससे कहा, मैं तुम तक कैसे पहुंच सकता हूँ? उस औरत ने जवाब दिया, जब तुम ईसाई बन जाओगे तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया, वो किले के अंदर दाखिल हो गया, नसरानी बन गया, किले के अंदर चला गया। कहते हमने वो गजवा इंतहाई रंजो गम की हालत में पूरा किया, यहाँ तक कि हम में से हर एक को ऐसे लगता था जैसे उसका अपना बेटा इस हाल को पहुंच गया जिस हाल में ये नौजवान पहुंचा। कहते फिर हम दोबारा एक और जिहादी लश्कर में निकले और इसी किले के करीब से गुजरे, तो वही नौजवान नसरानियों के साथ मिलकर हमें किले के अंदर से देख रहा था। तो हमने उसको पुकार के कहा, फलां तुम्हारी किरात का क्या हुआ जो तुम तिलावत करते थे, तुम्हारे इल्म का क्या हुआ, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे रोजे कहाँ गए? उसने जवाब दिया, सुन लो मैं सारा का सारा कुरान भूल चुका हूं सिवाय इन आयात के, मुझे कुछ याद नहीं है। और वो 14वें पारे की रुबामा यवदुल्लदीन कफरुल कानू मुस्लिमीन, ये वाली आयात उसको याद थी कि एक वक्त आएगा जब काफिर ये तमन्ना करेंगे काश वो मुसलमान होते, और आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए कि ये कुछ खा लें मज़े उड़ा लें और लंबी चौड़ी उम्मीदें इन्हें गाफिल किए रखें, फिर जल्दी इन्हें मालूम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सूरह हिजर की ये आयात है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। इस नौजवान को सिर्फ ये याद था, ये किताब है अल मुंतजिम फी तारीख़ अल मुल्क और वल उमम, इसके अंदर ये वाक्या जिक्र है। तो इंसान कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मुझे तो हिदायत मिली हुई है, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस सीधा हूं और सीधा ही रहूंगा, ऐसा नहीं। नंबर टू बात ये कि हिदायत भी घटती बढ़ती रहती है। देखिए ना सूरह काफ में अल्लाह ताला ने लड़कों के बारे में जब जिक्र फरमाया तो फरमाया वह जिदना हम हुदा, हमने उनकी हिदायत को और बढ़ा दिया। और अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में भी फरमाया वल्लदीन अहतदौ व ज़ादा हम हुदा, हिदायत आप तो लोगों की हिदायत को अल्लाह ने ज्यादा किया। इसका मतलब हिदायत भी बढ़ती भी है कम भी होती है, एक जितनी जरूरी नहीं कि आज जितनी है उतनी कर लो। बस ना आप कोई चीज ऐसी कोई चीज है जो कि चलिए इस मिसाल को छोड़ दे, इससे सोचे कि आप हिदायत पा के भी ये नहीं कह सकते इनाफ है, बल्कि हर एक को और हिदायत की जरूरत है, हर एक को और हर वक्त हिदायत की जरूरत है। यानी आज की मुझे हिदायत मिल गई, मुझे फिर दोपहर को भी जरूरत है, शाम को भी जरूरत है, अपने कामों में रात को भी जरूरत है, फिर सुबह को जरूरत है, मैं हर वक्त हिदायत मांगती रहूं, हर दिन हर टाइम, क्योंकि हर टाइम मेरे सामने नए अफेयर्स हैं, नए मामलात हैं, नए चैलेंजेस हैं, नए से नए फितने सर उठाते हैं, मुझे हर एक में रास्ता देखने की जरूरत है। अल्लाह मुझे तेरी हिदायत की जरूरत है। और ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि मुकम्मल हो गए, कोई बंदा कहे जी मैं इतना PhD हो गया हूं, मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे तो हिदायत की जरूरत ही नहीं, मुझे सब कुछ पा लिया, ऐसा कोई नहीं। देखिए आप शावर करते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में एक दफा शावर कर लिया, मैंने गुसल करके बैठ गई, सारी जिंदगी के लिए मेरे लिए काफी, ऐसा नहीं है। आपको फिर दोबारा इंसान को जरूरत पड़ती है, फिर रोज जरूरत पड़ती है। इसलिए जिंदगी में कितने इधर उधर हमारे फितने हैं, हर तरफ ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे समझ लें कि गुमराही के दरवाजे हैं जिनके ऊपर लोग खड़े हैं और बुला रहे हैं, इधर आ जाओ, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है। अगर इंसान जरा सा भी डी ट्रैक हो गया, सिराते मुस्तकीम से उतर गया, तो बस फिर खराबी खराबी है। और यहां पे देखें, ए दी नी नहीं कहा गया, नून के साथ अगर या होती ना तो होता दिखा मुझको, यहां पे कहा क्या, ए दी ना दिखा हमको। क्यों? इसलिए जमा का सीखा है कि नंबर 1, अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि सबके लिए दुआ मांग, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, हर एक के लिए दुआ मांगे हम। अल्लाह हम सबको हिदायत दिखा कर दे सिराते मुस्तकीम की, लेकिन क्या हम वाकई प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी सबके लिए हिदायत का रास्ता चाहते हैं, सिराते मुस्तकीम चाहते हैं, या हम हर एक पे फतवे लगाते हैं, ये तो है ही जहन्नमी, ये तो है ही, इनको तो नहीं कभी हिदायत मिली, जबकि हम नमाज में कह रहे थे ये दिन सिराते मुस्तकीम सबके लिए मांग रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि एक मुसलमान जो होता है ना, खैर ख्वाह होता है, और अल्लाह ताला इस तरह चाहता है कि आप लोगों के खैर ख्वाह बने, लोगों के लिए भी हिरस रखें कि अल्लाह इसको भी सिराते मुस्तकीम मिल जाए, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, किसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसकी हम बातें बनाते रहते हैं, उधर हम कहते हैं दिन सिराते मुस्तकीम दिखा हमको सीधा रास्ता, इतना आपको दर्द है कि आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप नमाज से उठे तो आपको लोगों की बातें बनानी, देखो फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ने ये कर, फिर हम उनकी बातें, हम तो नहीं ये चाहते कि अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखा दे, इनके लिए हमने अभी दुआएं की हैं, खुद सोचे ना, सबके लिए हम कर रहे हैं, हम सबको दिखा दे रास्ता सीधा। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है हम सबके खैर ख्वाह बन जाए, एक दर्द मन दिल रखने वाले हों। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो जनाजे की नमाज पढ़ना है, इसका इतना अजर अल्लाह ताला ने लिखा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह हो पर वो पता नहीं बंदा इतना गुनाहगार था या कैसा था या वैसा था, लेकिन इतना अजर लिख दिया कि तुम अगर नमाज जनाजा पढ़ोगे कि रात के बराबर तुम्हें अजर मिलेगा। अल्लाह ताला को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे उसकी नमाज जनाजा पढ़ने की वजह से, अल्लाह ताला की कोई बातियात में तो नहीं इजाफा हो रहा, लेकिन इसका मतलब अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। ये रिवॉर्ड रखा तो हम भागे चले जाते हैं, अच्छा चलो फलाने का नमाज जनाजा है हम जाते हैं पढ़ने के लिए, एक के रात के बराबर मुझे सवाब मिल जाएगा, हम नहीं भी जानते होते तो तब भी हम पढ़ लेते सिर्फ इस लालच में कि हमें वो सवाब क्यों रखा कि तुम पढ़ो इसके लिए। वो कितना मेहरबान रब है कि वो एक बंदा मर चुका, वो तो नहीं उठ के कह सकता कि आओ मेरे लिए कुछ करो या मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला ने बंदों को ये इंसेंटिव दे दिया, मैं तुम्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड दूंगा तुम मेरे इस बंदे के लिए दुआ करो ना, नमाज जनाजा क्या है उसके लिए दुआ है, तुम इसके लिए दुआ करो ना आके, मैं तुम्हें इतना रिवॉर्ड दूंगा। अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत है अपने बंदों से कि एक बंदा दिन में कितनी दफा कहता है अल्लाह हमको दिखा दे, हमको हमको मुझको नहीं हमको दिखा दे, कि तुम सिर्फ अपने लिए ना मांगो सबके लिए मांगो, सभी सीधा रास्ता देख ले। अल्लाह अकबर। क्या वाकई हमारे अंदर ऐसा दर्दमंद दिल है? क्या वाकई हम सबके लिए चाहते हैं? नहीं है ऐसा, तो फिर पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, हम कितनी रकतों में कह रहे हैं, अल्लाह हमें दिखा दे, अल्लाह हमें दिखा दे। अब हमें के अंदर सोचे वो सारे ही लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते, वो भी उसके अंदर आ गए। जो आपके रिश्तेदार जिनसे आप नाराज हैं वो भी आ गए, जिसने आपके साथ कभी ज्यादती की हो वो भी आ गए, जो जालिम फाजिर है वो भी आ गए, सारे ही आ गए ना। हम सबको दिखा दे सीधा रास्ता। कितना प्यारा एक मोमिन का दिल होता है ना, वो दिखा दिया, ये आईना है। मोमिन का दिल ऐसा या नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला हमें बता रहा है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम सबके लिए ही मांगो। और फिर देखें, ए दी ना कह दिया, अब सुभान अल्लाह, जब सारे ही कह रहे होंगे तो उनके अंदर कोई अल्लाह ताला के ऐसे प्यारे भी बंदे होंगे, फौरन उनकी कबूल हो जाएगी, तो हमारे लिए भी दुआ कबूल हो गई, है ना। वो जब कह रहे हैं ए दी ना, अगर वो तो नेक नेक लोग जो बड़े अल्लाह ताला के मुकर्रबीन हैं, वो सिर्फ अपने लिए मांग रहे होते तो वो तो एक की बात होती ना, लेकिन जब वो इतने लोगों के लिए मांगेंगे उसमें हम भी शामिल हो गए, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। हम कहें कि इमाम काबा जब मांग रहे हैं तो हमें भी हिदायत मिल जाए, तो उनको समझते हैं कि भाई ये तो कितने अल्लाह ताला के नेक बंदे। तो जो भी कहीं मांगेगा वो बाकियों के लिए दुआ कर रहा है, सुभान अल्लाह। तो कितने लोगों की दुआओं में आप भी आ गए, लेकिन कितने लोग हैं जो दिल से ये मांग रहे होते हैं। और पता नहीं किसको सिराते मुस्तकीम मिल जाए, किसकी दुआओं के ऊपर। अल्लाह अकबर। तो हमने आपसे ऐसा केयरिंग दिल रखना है, ठीक है, चाहे कोई काफिर ही क्यों ना हो, अल्लाह इसको भी हिदायत, क्योंकि हिदायत सिर्फ इस्लाम में आना नहीं है, इस्लाम पे चलना भी है। इस्लाम पे आ जाना, इस्लाम के ऊपर चलना, नेकियों की तौफीक मिल जाना, ये सब है सिराते मुस्तकीम पे चलना, अल्लाह ताला की फरामीन की इताअत करना, जो उसने हुक्म दिया है वैसे करना, ये सब सिराते मुस्तकीम है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सिराते मुस्तकीम खुला है, बिल्कुल कुशादा है, बिल्कुल क्लियर है, तो अब ऐसे ना सोचें आप कि हम पता नहीं लॉस्ट हो जाएं, हम कैसे फाइंड आउट करें। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बता दिया कि फितनों के दौर में, अब हमें कितनी परेशानी होती ना, इतने फितने हैं, ऐसे हैं, तो हम क्या करें। फितनों के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया वह कि आपने कुरान को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को और सहाबा के तरीके को ऐसे जैसे दांतों से इंसान पकड़ लेता है ना, इस तरह से पकड़ के रखना। आपको पता है कि जो तरीका मेरे नबी का था वही है जो सिराते मुस्तकीम है, जैसे जो अल्लाह ताला का फरमान है वही बात है जो हक है, तो आपको बिल्कुल राइट और रॉन्ग का पता चलना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो अब आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत तो मांग ली है, और हिदायत, अच्छा एक बात और, हिदायत इतनी बड़ी नेमत है कि देखिए किसी नेमत को हमने यूज करना है ना, जो बाकी नेमतें उनको हमने यूज करना है ना, उसके अंदर भी हिदायत होगी तो वो नेमत हमारे लिए रहमत बनेगी, वरना वो नेमत भी जहमत बन जाएगी। अच्छा एक मिसाल, मसलन इसी से आप बाकी भी समझ लें, मसलन है सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर मेरे पास हिदायत होगी तो ये सेहत मेरे लिए रहमत है वरना जहमत है। कैसे जहमत कैसे बन सकती, सेहत भी जहमत बन सकती। हाँ जी, कि जब आज मेरे पास सेहत है तो मैं कोई गलत काम करना शुरू जाऊं, नौज़ बिल्ला, कोई ऐसी गलत चीजें करना शुरू जाऊं, इधर भाग रहे उधर दौड़ रहे ऐसे कर रहे हैं, तो बाज दफा नेमतों को हम नहीं समझते कि वो जहमत बन सकती हैं, वो जहमत बन जाती हैं क्योंकि वो उसकी आखरत के लिए खसारे का बायस होती हैं, आखरत में नुकसान होता है। मसलन किसी के पास बहुत माल है, बड़ी जी अल्लाह की बड़ी रहमत है आपके ऊपर, लेकिन अगर हिदायत की नेमत नहीं है ना, वो ही माल वो गुनाहों में इस्तेमाल करेगा, वो उससे शराब पी रहा है, वो उससे ये कर रहा है, आज उसके पास माल ना होता तो ना ऐसे उड़ाता, वो उससे नाच गाने की उस महफिलों में बैठा हुआ है, वो उससे फजूल खर्चियां कर रहा है, वो उसके ऊपर तकब्बुर कर रहा है, शो ऑफ उसके अंदर आ गई है, इतना तकब्बुर है किसी को कुछ समझता नहीं, माल की वजह से बना। वो माल तो रहमत था लेकिन इसके पास हिदायत नहीं थी कि वो रहमत बनता है इसके लिए, वो तो जहमत बन गया, क्योंकि आखिरत में ये क्या होगा, अजाब। तो इसी तरह बाकी नेमतें भी हैं। अब किसी के पास गाड़ी है, ठीक है जी नेमत है, मगर हिदायत नहीं है, तो ये गाड़ी उसके लिए बजाय रहमत बनने के, हो सकता है वो उस गाड़ी को लेके कहीं चोरी चकारी के लिए जाए, कहीं कोई गलत कामों में पड़े, गलत जगहों पे पहुंच जाता है, ना गाड़ी होती ना जाता है, ऐसे को कहते हैं ना लोग, ना ये चीज होती तो ना ये गलत काम करता, तो वो हिदायत की नेमत नहीं है उसके पास। हिदायत जिस चीज के साथ लग जाती है ना, उसको रहमत बना देती है। फिर आपको गाइडेंस मिल जाती है ना, मैंने इसको कैसे यूज करना है, दायत इज वॉट, रहनुमाई, गाइडेंस। और ऐसी गाइडेंस जब अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर चला भी दे और सही डायरेक्शन में रखे फिर आपको उसी के ऊपर, तो बहुत बड़ी नेमत है। तो जब ये इसको तलब करें तो अपनी डेस्परेशन दिखाएं कि मुझे ये चाहिए हिदायत, और हर चीज के अंदर ही चाहिए ना, औलाद को कैसे रेस करना है इसमें भी हिदायत चाहिए, मुझे नौकरी पे कैसे रहना है उसमें भी हिदायत चाहिए, मुझे बिजनेस क्या करना है और किस चीजों से बचना है बिजनेस में उसमें भी हिदायत चाहिए। ये सारे सिराते मुस्तकीम हैं, इनमें मुझे सीधा चलना है, ये सारे मामलात हैं जिनमें मुझे सीधा रास्ता चाहिए, हर चीज में सीधा रास्ता चाहिए ना। मसलन खानदान के अंदर आपकी लड़की है, ससुराल में मैंने किस तरह से रहना है, हस्बैंड के साथ मैंने कैसे मामलात करने, मुझे इसमें भी सीधा रास्ता चाहिए। तो जब हमने ये कह दिया, फिर उसके बाद अब ये आया, ये अब सिरात की एक्सप्लेनेशन है, हमने यहां तक मांग लिया, बात यहां तक मुकम्मल हो गई, लेकिन किसी को भी कोई चीज समझाने के लिए, मसलन आप किसी को बताना चाहते हैं ना कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, तो जब तक वो बीमार नहीं होता उसको नहीं पता चलता सेहत नेमत है। किसी को बताना चाहते हैं ना दिन क्या है, जब तक रात नहीं देखेगा ना उसको समझ नहीं आएगी दिन क्या है। जिसको बताना चाहते हैं सफेद क्या है, तो वो काला नहीं देखेगा तो उसको नहीं पता कि सफेद क्या चीज होती है। इसी तरह सिराते मुस्तकीम क्या है, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए उस, इसलिए क्योंकि आपने सारी जिंदगी इस पे चलना है ना, आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो आपको आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा रास्ता है, कहीं कोई शक या कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। वो बता दिया गया, अब एक्सप्लेनेशन है सिरात की, ये सिरात क्या होता है, कैसा रास्ता होता है सिरात। अभी ये तो हमें पता चल गया सिरात का मतलब है कुशादा, सीधी सड़क होती है और सीधा होता है और ऊपर को जा रहा है, खड़ा हुआ है और क्लियर है बहुत। अच्छा एक बात और भी है, ऊपर को जब कोई चीज जा रही होती, मैंने आपको भी बताया, तो फिर नीचे की चीजें क्या लगने लगती हैं, छोटी छोटी लगने लगती, यानी दुनिया जो है ना फिर उसकी नजर में इतनी बड़ी नहीं रहेगी, दुनिया उसकी नजर में बहुत छोटी हो जाएगी, दुनिया की बातें, दुनिया के ताने, दुनिया की जो 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 लोग जिन चीजों को लोग बहुत बड़ा समझते हैं वो उसके लिए बड़े नहीं रहेंगे। सिरात रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। अब हम सोच रहे थे यहाँ पे आता है सिरात अल्लदीना हदैता अलैहिम, तूने जिनको हिदायत दी, लेकिन यहाँ पे अनअमता आ गया, इसका मतलब ये है कि हिदायत एक नेमत होती है ना, अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर इनाम करा, जिनको ये नेमत अता फरमा दी, वो है जिन जो जिस रास्ते पे तुमको चलना है, यानी आपको आपके रोल मॉडल्स दिखा दिए, ये है आपके रोल मॉडल जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, यानी ये अल्लाह ताला का इनाम ही होता है कि किसी को वो चला दे इस रास्ते पे, इसीलिए तो अल्लाह ताला से तुम मांगो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल होता है कि अल्लाह ताला किसी को चलाए। अनअमता की तशरीह हमें कुरान में दूसरी जगह से मिलती है, सूरह निसा से, कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि अनअमता अलैहिम कौन लोग हैं, वो लोग जो अंबिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालेहीन हैं, वो हैं जो अनअमता अलैहिम है अल्लाह ताला की नजर में, वो हैं इनाम याफ्ता। अच्छा, जिन पे तूने इनाम किया, तूने इनाम किया यानी अल्लाह ताला ने खास तौर पे उनके ऊपर अपना करम किया, ये अल्लाह ताला का इनाम था कि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी। तो वो रास्ता जो, अच्छा अनअमता जो है ना, एक बात और सुने, अनअमता पास्ट है, पास्ट टेंस है, तूने इनाम किया था यानी अलैहिम उन पर जिन पर तूने इनाम किया था। इसे पता चला कि हम जो पीछे गुजर गए लोग, जैसे मैंने आपको बताया अंबिया सालेहीन शुहदा सिद्दीकीन, उनके रास्ते को मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। आज के किसी का क्यों नहीं कहा, प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं कहा गया कि आज जिन पर तूने इनाम किया वह है? इसलिए कि आपको नहीं पता जिसको आज को हिदायत मिली है कल को भी मिले या नहीं, उसकी मौत किस चीज पे आए हम नहीं जानते। हम आज के लोगों को उस तरह से नहीं सोच सकते कि कई लोग मुझे कहते हैं हम बस दुआ करते हैं अल्लाह हमें आपके जैसा बना दे, नहीं ऐसी दुआएं नहीं करें, हमें क्या पता किसका अंजाम क्या होता है। जब तक कोई इस मौत की सरहद से गुजर ना जाए, अल्लाह ताला अंजाम बखैर करना, तब तक, जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक नहीं पता। और किसी का नहीं पता कि उसको अनामता अलैहिम है, आपको क्या पता उसकी हिदायत में कितनी कमी हो, उसके अंदर कितनी गलतियां हैं। सिर्फ अंबिया पाक हैं गलतियों से, और सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया इस कुरान में, रदी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह ताला से राजी। जिनको सर्टिफिकेट मिल गए हैं वो हैं अनामता अलैहिम, उनको बताया गया तुमने इनको देखना है और इनके रास्ते पर चलना है, ये है वो रास्ता जो तुम्हारा रास्ता होना चाहिए। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सफर मुश्किल है क्योंकि जाहिर है ऊपर को है, इंसान थक भी जाता है, सांस भी फूलता है, तो जब तुम थकने लगो ना, फिर वो उन हस्तियों को देख लेना जो कभी इस रास्ते से गुजरे थे, वो भी यहीं से गुजरे थे, वो तुम्हारे रोल मॉडल हैं, तुम फर्स्ट वन नहीं हो इस रास्ते पे चलने वाले, उन्होंने चल के दिखाया। और ये मत कहना इट्स इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे चल सकते, नहीं इट्स पॉसिबल क्योंकि वो चले थे इस पे। और आप हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं ना, जब भी कोई चीज होती है अपने से ज्यादा, मिसल है कोई नेकी का काम करना है, अपने से ज्यादा नेक लोगों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ी कि अपने से नीचे को देखेंगे, जो फलां तो ये भी नहीं करता, चलो ठीक है मैं तो सिर्फ फर्ज तो पढ़ लेती हूँ, वो तो पढ़ती ही नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे ना। आप जब नेकी का रास्ता है तो अपने से ऊपर देखेंगे, वो हमसे ऊपर है। तो आज वालों को नहीं, जो पहले गुजर गए और सर्टिफाइड हैं कि वो अनामता अलैहिम है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के, आपके बाद सहाबा का जमाना, ताबईन का, तबा ताबईन का, जिसको जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून कहा, जमानों में बेहतरीन जमाने वो, उनके अलावा किसी का पता नहीं है कि उसके बाद क्या है, उनकी क्या गारंटी, क्या चीज, कोई नहीं किसी की गारंटी दे सकता, कोई सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम किसी और को रोल मॉडल नहीं बना सकते, हमारे लिए अल्लाह ताला ने अनामता अलैहिम को रोल मॉडल बना के पेश कर दिया है, वो ही हिदायत के जो पा चुके थे, वो हिदायत के हमारे रहनुमा हैं, वो हमारे लिए आगे आगे हैं, हम उस रास्ते में पीछे पीछे। जिन पे इनाम हुआ उनका रास्ता मुझे जिया नहीं चाहिए, मैं उसकी दुआ कर रही हूं। और आगे मैंने जैसे आपको बताया कि रात को समझा जाए दिन के साथ और सेहत को समझा जाए बीमारी के साथ, तो ये भी बता दिया गया कि इनके ऑपोजिट कौन होते। गैर ना दिखाना ना उन चलाना यानी उन पे, अल मगदूब गजब किया गया अलैहिम उन पर। अब यहां पे ये नहीं कहा गया गदीब अल्लाह अलैहिम, अल्लाह ताला गजबनाक हुआ उन पे, अल्लाह ताला की तरफ नहीं मंसूब की गई बात, बल्कि वहां पे अनअमता में कही गई तूने इनाम किया। यहां पे नहीं कहा गया कि तूने गजब किया, तूने गुस्सा किया, बल्कि मगदूब गुस्सा किए गए जो उनके रास्ते पे ना चलाना। अब गुस्सा किए गए इस तरह से क्यों कहा गया? इसलिए कि अगर एक तो नंबर वन बात वजह क्या है कि हर खैर को आप अल्लाह ताला के साथ मंसूब करें लेकिन शर को ना करें, ये भी एक तमीज है, एटिकेट्स है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम सीखते हैं वाइजा मरत तो फहुआ यशफी, जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। ये नहीं कहा कि जब वो मुझे बीमार करता है तो वो मुझे शिफा देता है, ये नहीं। जब मैं बीमार होता हूं, हालांकि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये कहने में बेअदबी लगती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हम तुझसे कोई भी शर मंसूब नहीं करते। नहीं, हर शर की बात को ना इंसान अपने ऊपर करता है या वैसे करता है जनरल, लेकिन ये नहीं कहता कि अल्लाह ने ये कर दिया। तो दूसरी बात, दूसरी वजह क्या है, अगर ये कह दिया जाता कि अल्लाह ताला गजबनाक हुआ उनके ऊपर, तो सिर्फ अल्लाह ताला गजबनाक हुआ है मगर और भी गजबनाक हुए हैं, जैसे फरिश्ते, जैसे दूसरे इंसान, जैसे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कयामत के दिन उनके लिए गुस्से में होंगे या मरते ही हो जाएंगे कि इन्होंने किस मुसीबत में हमें डाल दिया। तो जो गुनाहगार होता है या जो ऐसा बदकिरदार इंसान होता है उससे सिर्फ अल्लाह ताला उसके ऊपर गुस्से नहीं होता, अल्लाह ताला की जितनी मखलूक है सब उसके ऊपर गुस्से में होती, जमीन को भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है जिस पर वो चल रही होती कि ये अल्लाह का नाफरमान है, आसमान को भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है कि जो देख रहा है। आपने सूरह मरियम में पढ़ा होगा ना कि ये शिर्क अगर आसमान सुन ले, जमीन सुन ले और पहाड़ सुन ले तो क्या इनका हाल हो, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, आसमान गिर पड़े, जमीन फट जाए। तो नहीं, अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर इतना असर होता है इन गुनाहों का। तो सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह ताला गजबनाक, बल्कि बहुत सारे गजबनाक हैं उनके ऊपर, उनके रास्ते पे ना चलाना। वाला दौलीन और ना ही दौलीन के, दौलीन कौन है, वो लोग हैं जो गुमराह हो गए। जो यहां पे भी देखें, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला ने जिनको गुमराह किया, यहां पे भी वही बात है कि वो गुमराह हो गए, उन्होंने रास्ता गुम कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप देखें ना, अमता में मैंने आपको क्या बताया, तूने इनाम किया, लेकिन तूने इनाम किया के अंदर क्या है, ये इसम है या फेल है? तूने इनाम किया, कुछ काम करने की बात आ रही है तो जाहिर है फेल है। और मखदूब क्या है, इसमें कोई काम करने की बात नहीं, जो गजब किया गया कोई शख्स है या कोई लोग हैं, और दौलीन वो लोग हैं जो गुमराह हुए। तो ये क्या है, दोनों मखदूब और दौलीन इसम है या फेल? इसम है ना। अच्छा अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेल के अंदर जमाना होता है, हाल माजी मुस्तकबिल, लेकिन इसम में कोई जमाना नहीं होता, इसम मतलब मुस्तकिल होता है। ठीक, इससे पता चला कि अनअमता अलैहिम तो फेले माजी है, ये तो गुजर गए, लेकिन ये जो है ना मगदूब और दौलीन, ये गुजर नहीं गए सिर्फ, ये हर जमाने में होंगे, माजी में भी, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी। ठीक है, और हमें ये भी पता चला कि जब हम पढ़ते हैं कि मगदूब अलैहिम वो तो यहूदी हैं और दुआलीन जो हैं वो ईसाई हैं। ये आपने भी बहुत दफा पढ़ा होगा ये बात। तो यहां पर अल्लाह ताला ने यहूदी और ईसाई तो बोला ही नहीं, यहां पे तो मखदूब और दुआलीन कहा गया, वरना कहा कह दिया जा सकता था कि जो यहूदी और ईसाइयों के रास्ते पर ना चलाना। इससे हमें क्या पता चला कि ये स्पेसिफिकली उनके लिए सिर्फ नहीं है, वो तो है शामिल, लेकिन उनके अलावा जो जो किरदार उनके जैसा अपनाएगा वो भी इसमें शामिल है, वरना स्पेसिफिक हो जाते। अब क्या ऐसे लोग हैं नहीं जो के अपने आप को कुछ भी कहते हों लेकिन उनके भी किरदार यहूदियों वाले हों, और ऐसे भी हैं जो अपने आप को शायद मुसलमान ही कहते हों लेकिन उनके किरदार, उनके तरीका, उनका सब कुछ ईसाइयों वाला है। यहाँ पे निगेट किया गया कि नहीं चाहिए वो रास्ता, उस पे ना चला देना जो इनका रास्ता है। अब अगर इन्हीं को लेकर भी बात की जाए, क्योंकि ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में भी फरमाया ये कि ये मखदूब यहूद हैं, और कुरान में भी आता है यहूदी हैं जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ था, और दुआलीन ईसाई हैं। तो अब आप हम ये जब हम पढ़ते हैं उसके बाद जब आप नमाज पढ़ के आप खड़े हो गए, आपने ये सूरत पढ़ ली, अल्लाह ताला इनके रास्ते पे ना चलाना, लेकिन फौरन हमें ये आता है कि वो क्रिसमस भी आ रही है ना, तो हमें ट्री भी लगाना चाहिए और सेंटा भी कहीं, बड़ा ही अच्छा लगता है इनका तो, ये तो बिल्कुल बोरिंग है मगर ये इनके तरीके तो बहुत अच्छे हैं। इनके जैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इनके जैसा लिबास और वो होना चाहिए, इनकी तरह के एटिकेट्स तो किसी को आते ही नहीं, और इनके रस्म व रिवाज ही हमें बहुत पसंद हैं, और ख़ास तौर पे ईसाइयों के। तो क्या हम जो कह रहे हैं कि या अल्लाह ताला हमें तो उनके रास्ते से बचा लेना, वो रास्ता नहीं चाहिए, लेकिन आम जिंदगी में क्या हम उन्हीं के रास्ते पर चलने को बहुत बड़ी चीज नहीं समझते, एजाज नहीं समझते, बड़े प्राउड नहीं होते इस बात के ऊपर कि जी हम भी वैसे ही हैं, और जितना उनके क्लोज हों और अपने दीन को पीछे छोड़ें उतना ही हम अपने आप को ज्यादा मॉडर्न और अपडेटेड और बड़े स्टाइलिश समझते हैं। हम जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, जिनके लिए दिन रात हम कह रहे हैं इनके रास्ते पर ना चला, किसी चीज में भी इनके रास्ते पर ना चला, सिर्फ इबादत में नहीं है, लेकिन फिर हमें उनके रास्ते पसंद कितने हैं और हम मरऊब कितने हैं, इतने इंप्रेस्ड हैं दिलों में इनके रास्तों से कि वो गो के बिल में भी घुसता है ना तो हम कहते हैं हम भी वहीं घुस जाएंगे, इसमें भी कोई अच्छी चीज ही होगी। क्या ऐसा नहीं है आज? क्या आप हर तरफ नहीं देख रहे? वो हैलोवीन करेंगे तो हमने भी करनी है, वो ब्लैक फ्राइडे करेंगे, चलो हम व्हाइट फ्राइडे कर लेते हैं, हमने भी उसी वक्त करना। मतलब हर चीज में हमारा ये होता है कि किस तरह हम इनसे करीब से करीब तरीन हो। हमारा बस चले तो हम इस्लाम का नाम भी छोड़ के वही नाम रख लें, और रखने लगे भी लोग कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो बहुत इस्लामी किस्म का हो, ऐसा हो जो उनके साथ भी चल जाए। तो जब इंसान का दिल मरहूब होगा किसी से, इतने इंप्रेस्ड होंगे आप किसी से, तो फिर तो आप उन्हीं के तरीकों को अपनाएंगे ना। जब हम इंप्रेस्ड ही नहीं है नामता अलैहिम से, हम उनको जानते ही नहीं है ना, कभी हमने उनकी जिंदगियों के बारे में पढ़ा ना, जानने की कोशिश की, हमें क्या मालूम कैसे थे भाई, गुजर गए जो भी थे, हमें तो ये नजर आते हैं आज, वो तो माजी के थे ना, हम तो माजी में जाना ही नहीं चाहते, वो होते होंगे वैसे भाई, हम तो वैसे बन नहीं सकते, हमें तो ये अच्छे लगते हैं। वाकई दिल से पूछ के देखें, मुंह से शायद कोई ना भी बोले लेकिन हमारे तौर तरीके बताते हैं कि हम किसके रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कि मखदूब इनको इसलिए ये मखदूब हुए क्योंकि इनके पास इल्म तो था, यहूदियों के पास बहुत इल्म था, लेकिन इनके पास अमल नहीं था, अमल करने वाले नहीं थे, हीले बहानों से अमल को छोड़ने वाले थे। और दूसरी तरफ दौलीन ये वो लोग हैं गुमराह इसलिए, और गुमराह का मतलब क्या, गुम कर दिया रास्ता, इन्होंने रास्ता इसलिए गुम कर दिया कि ये नहीं कि ये अमल नहीं करते थे, अमल करते थे लेकिन इनको इल्म ही नहीं था, चलना किधर को है वो देखा ही नहीं, बस राहबानियत इख्तियार कर ली, पहाड़ों में जाके बैठ गए, सारी सारी जिंदगियां शादियां नहीं की, कोई फैमिली नहीं है, बस सब चीज से आजाद होके अपने आप को समझ लिया कि बस हम बहुत नेकी कर रहे हैं और इस नेकी में इतने बढ़ गए हैं कि हमने सब घर बार छोड़ छाड़ के, काम कारोबार छोड़ के हम बस सन्यासी बन के एक तरफ बैठे हुए। वो दौलीन हुए। और ये मखदूब, आपको पता है ये कितने बड़े बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े स्कॉलर्स थे, इनको अहले किताब यहूदियों को इतना बड़ा समझा जाता था इल्म के मामले में कि मुशरिकीन ने मक्का उनसे जाके क्वेश्चंस करते थे कि आप हमें बताएं इनको क्या, हम इस चीज का क्या इनसे सवाल करें। तो वो इतने इल्म वाले थे लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया, क्या समझ आया हम, तो समझ आई बात, इल्म आने के बाद अमल ना करना ये भी बुरा है, और इल्म करते जाना लेकिन आ, 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 अमल करते जाना लेकिन इल्म ही हासिल ना करना ये भी बुरा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं देखो हम तो इसलिए इल्म नहीं लेते क्योंकि अमल करना पड़ेगा, वो तो हमसे होता नहीं है, लिहाजा छोड़ दो हम इल्म ही नहीं लेंगे, वो भी गुमराही है। अगर आपके पास इल्म ही नहीं है और अमल में आप अपने तौर से बहुत बड़ी नेकियां करते फिर रहे हैं लेकिन इल्म के बगैर जो अमल है ना वो गुमराही है, और इल्म आने के बाद अमल ना करना अल्लाह ताला का गजब लेकर आता है। तो ये इससे पता चला दोनों से ही बचना है। हाँ हम इल्म ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मुकम्मल हो गया और हम तो, हमने इतनी क्लासें ले रही हैं, ये इतने कोर्स कर लिए, अब तो हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं, नहीं, जब तक इसके बाद अमल नहीं आता तब तक, और वो भी अमल सारी जिंदगी का, तब तक हम अपने आप को कुछ नहीं समझ सकते कि हमने कुछ किया है। अमल जरूरी है वरना इंसान अल्लाह के गजब में आ जाता है। ऐसे ही है जैसे आप किसी को बताएं कि नहीं देखें, आपने अपने बच्चे को कहा देखो तुमने घर से बाहर नहीं जाना, मैंने तुम्हें कह दिया, मैंने तुम्हें वॉर्न कर दिया, ये इसके अंदर मसले होंगे, लेकिन वो फिर भी चला जाता है, कितना आपको गुस्सा आएगा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि नहीं करना फिर तुमने वो ही किया। अब अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले जो हैं मुंह से बोले हम मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम इसको भी मानते हैं, इसका इल्म भी ले लें, और उसके बाद कहें हमसे तो नहीं होता, हम तो नहीं ये कर सकते। अल्लाह अकबर। तो इल्म के साथ अमल ना हो तब भी तबाही, और अमल के बगैर, और इल्म के बगैर अमल करना तब भी तबाही, पूछ दोनों की होनी है, दोनों में से कोई भी फारिग नहीं है। हाँ मगर वो जिसके पास इल्म है उसका ज्यादा चांस है ना कि वो अमल सही से कर ले, और जिसके पास इल्म ही नहीं वो अमल करता जा रहा है वो तो गुमराही में आगे ही निकलता जाएगा। और आज देखे हमारे यहाँ दौलीन का काफिला है, पूरी कौम की कौम दौलीन में है, कुछ इल्म नहीं, बस जो इधर उधर से किसी से सुना उसने कह दिया, किसी ने अपना ख्वाब बना बता दिया, किसी ने ये कर दिया, बस उसके ऊपर चल रहा है। कुरान पढ़ना नहीं है क्योंकि कुरान पढ़ेंगे तो तुम गुमराह हो जाओगे ये कहते हैं, अल्लाह ताला माफ करे। तो वो लोग इसलिए मखदूब और दौलीन हुए क्योंकि उन्होंने इल्म और अमल में से एक को चूज किया, या तो इल्म लिया और अमल नहीं किया, या अमल किया और इल्म नहीं लिया, तो दोनों ही इंसान को बुरे अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह हमें उन उनके रास्ते में ना चलाना, यानी हम ये दुआ करें कि इल्म लें तो साथ अमल भी करें, ये आप दुआ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें वो रास्ता ही नहीं चाहिए जो ऐसा हो। दूसरे यहूद ने क्या किया, उन्होंने पैगंबरों की मुखालफतें की और बहुत उनके साथ दुश्मनियां की और उनको कत्ल तक किया, और नसारा ने क्या किया, उन्होंने इतनी मोहब्बत कर ली ईसा अलैहि सलाम से कि उनको लेके खुदा का बेटा ही बना दी। तो दोनों ही रास्ते गलत है, नबी से दुश्मनी करना, उनकी मुखालफत ना वो भी गलत, यानी हक के रास्ते की मुखालफत, और हक में ऐसे हो जाना कि उनको खुदा का दर्जा दे देना, वो भी गलत। इतदाल के रास्ते पे रहना वही सही है, और वही सिराते मुस्तकीम है, और वही सीधा रास्ता है। और इसके बाद हम कहते हैं आमीन। कुछ लोग कहते हैं आमीन आमीन, मीम के ऊपर शद्दा, वो गलत है। आमीन ये सही है। और इसका मतलब क्या है कि जैसा अभी कहा गया, जैसी अभी ये पूरी बात हुई है, वैसा ही हो जाए, वैसा ही कर दे, यानी कि मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे दे, अनंत ताले इनके रास्ते पे चला दे। और वो जिनके आगे आगे काफले में अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, मैं भी उसका पार्ट बन जाऊं, चाहे कहीं पीछे ही हूं उस रास्ते पे, लेकिन उस रास्ते पे तो चलने वाला हो जाऊं, उस रास्ते पे मुझे चला दे, ऐसा ही हो जाए, लेकिन इनके रास्ते से मुझे बचा लेना जो मखदूब है और जो दौलीन है, जिन पे अल्लाह का गुस्सा हो गया, उस रास्ते पे कोई चलेगा, या जो गुमराह हुए थे उनके रास्ते पे, या आज जो लोग गुमराह हैं उनके रास्ते पे चलेंगे तो किधर पहुंचेंगे, तो इससे बचा लेना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम ये पढ़े तो तुम उसके बाद आमीन कहो, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाएगी, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। तो इसके बाद आमीन कहना चाहिए। और सहाबा कराम इतनी ऊंची आवाज में आमीन कहते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी उनकी आमीन से, इसका मतलब वो बुलंद आवाज में कहते थे। तो ये हमारी सूरतुल फातिहा है, इसमें आज के सबक से अमल की बातों में सबसे अहम अमल की बात यह है कि हम अपने आप को पहले ये देखें कि हम क्या अल्लाह ताला की गुलामी करने के लिए, जो हमने कहा इय्याक नअबुदु, क्या हम अल्लाह ताला की गुलामी करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए, उसके बंदे बनने के लिए क्या हमारा दिल आमादा हो गया। फिर इय्याक नस्ताईन, इसके अंदर जरूर आपने बैठ के ये सोचना है, अमल की बातों में तफक्कुर भी है, तदब्बुर भी है, अब ये सोचे कहाँ कहाँ पे मैं ये चीज के खिलाफ कर रही हूं कि मैं किसी और से ऐसे से गैब से मदद मांग रही हूं, कोई कोई सबब नहीं है, कोई जरिया नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके पास पावर्स हैं और ये मुझे मेरे काम बना सकता है। तीसरे ये कि अनअमता अलैहिम के लिए कम अज कम नियत जरूर कर लेनी है कि हमने इनके बारे में जरूर जानना है, इनकी जिंदगी को सीखना है, जिनके रास्ते पे चलना है, उनकी जिंदगियों का ही नहीं पता तो चलेंगे कैसे, सिर्फ नाम तक भी हम इतनी अच्छी तरह सबके नहीं जानते। पैगंबरों का रास्ता, क्या हमें पैगंबरों की जिंदगियों का पता है, क्या हमें सहाबा कराम की जिंदगियों का पता है, सहाबियात की जिंदगियों का पता है, ये अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे, जब तक इनकी जिंदगियों के मामलात नहीं पता होंगे हम अनामता अलहिम के रास्ते पे कैसे चल सकते हैं। सर्टिफाइड लोगों का अल्लाह ताला ने बता दिया, ये लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके रास्ते पे चलना, अल्लाह ताला ने इनको पास कर दिया है, इनके रास्ते पे चलो, वो नहीं जो फेलियर्स हैं उनके रास्ते पे ना जाना, मांगो अल्लाह से कि मुझे फेलियर्स के रास्ते पे ना भेज। तो इस चीज को हमने नियत कर लेनी कि हमने इनके बारे में पढ़ना है, सीखना है। तीसरी बात ये कि जब नमाज पढ़ने लगे तो आज हम नमाज जब पढ़ेंगे तो रुक रुक के पढ़ेंगे कि सूरह फातिहा की हर आयत मुबारक पे हम थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करके और हम उसको जहन में लेकर आए जो हमने तफसीर सुनी है, और वाकई मांगने वाली लजाजत और आजजी लेकर आए अपने लिए कि मैं मांग रही हूँ, मांगने का पता चले कि ये मैं कुछ मांग रही हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ सबक सुना रही हूँ जो मैंने तेजी से सुना दिया। अल्लाह ताला इस दुआ को हम सबके हक में कबूल और मंजूर फरमाए, और हमारी नस्लों के हक में कबूल और मंजूर फरमाए, और तमाम हमारे जितने भी प्यारे हैं उनके हक में कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
الحمد لله.